ओम शांति, ओम शांति। मधुबन के बाबा मुरली वाले, उनका क्या कहना, सब कुछ करके भी बाबा कैसे अपने आप को छिपाते हैं। तो रोज रोज हम बाबा की मुरली द्वारा नई नई बातें सुनते हैं, ज्ञान की गहराई भी सुनते हैं। कितनी पालना हमारी बाबा करते हैं, हर रूप से करते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं भी देते हैं। देखो ये हॉल सजकर तैयार हो गया है कल के लिए। वही सोच रहे थे 18 जनवरी पर तो बहुत आते हैं भाई बहने, नीचे से भी भाग कर आते हैं और कई आ भी चुके हैं। फूलों से भी सज रहा है पांडव भवन और ये आगे का फर्श भी तैयार हो गया है, तो कल से या आगे भी बैठ सकेंगे नीचे जो पट पर बैठना चाहें। क्योंकि उम्मीद होती है कि 18 जनवरी पर सब मिलाकर करीब करीब 4000 तो आ ही जाते हैं नीचे से, सब जगह से। अभी भी जो पार्टियों में आए हैं भाई बहने वो हाथ उठाएं। सभी पार्टियों में आए हुए थोड़े से आए, आज तो बहुत आएंगे। जो कल आए हैं खास 18 जनवरी के लिए हाथ उठाएं। हाँ देखो कितने आए। तो कल तो बिल्कुल साइलेंस डे रहेगा, 57वां अव्यक्ति दिवस हम ब्रह्मा बाबा का मनाएंगे। सारे भारत तो क्या सारे विश्व में ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस बाबा के बच्चे मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है, शिव बाबा को तो करना ही है, लेकिन भगवान का माध्यम कौन बना उसको भी तो प्रत्यक्ष करना है ना। तो आज हम बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने ज्ञान की गहराई एक कहानी के रूप में सुनाई है। जैसे पहले नानी दादी कहानियां सुनाया करते थे, तो बाबा ने भी कहानी के रूप में 84 जन्मों की कहानी बताई है। कहानी है लेकिन ये सच्ची कहानी है। वो तो झूठी कहानियां सुनाते हैं, बच्चे खुश होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था एक रानी थी, ऐसे कहानियां सुनाते हैं। तो भगवान ने भी ये सत्य ज्ञान एक कहानी के रूप में सुनाया है, जिसको ही फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा या तीजरी की कथा या अमर कथा के नाम से प्रसिद्ध किया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 17 जनवरी 2026 है। मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था, चले जाओ बुद्धि को ले जाओ उस स्वर्ग की दुनिया में, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। हमारी कहानी है ना, तो तुम बहुत घोर सोजरे में थे और अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो, तुम्हारी कहानी है। मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। बाबा ये नहीं पूछते क्यों अंधेरे में आए, हाँ नहीं थे पता है बाबा को, सोजरे में थे अंधेरे में आए, लेकिन बाबा फिर हाँ सोजरे में ले चलते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे, चले जाओ हमारी ही ये कहानी है, जब तुम पहले पहले जन्म में थे तब एक ही दैवी धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर तुमने दो युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। दो युग तक क्या किया वो भी कहानी में बताते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बाबा कहते हैं बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की, और अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता, आओ हाँ पुकारा ना, अब मैं आया हूं सब दुखों से छुड़ाने, फिर से सुख देने, अब मैं आया हूं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है, सब अंधेरे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं ये असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे, सारे रहवासी भारत के स्वर्गवासी थे। जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, चले जाओ उसी सतयुगी दुनिया में, हम ही भारतवासी स्वर्गवासी थे, एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, सब भाषाओं में अलग अलग नाम देते हैं, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी फिर बाबा भेंट कर रहे हैं, अभी क्या हो गया भारत का हाल? और अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं, जब स्वर्ग में थे तो कैसे थे? बाबा कहते तब तुम सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, उसको सुख धाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा मिला था। किसने दिया था स्वर्ग का वर्षा? बाबा ने दिया था। अभी तुमको फिर से लेना है, गवा दिया, बाबा कहते चलो गवा दिया, अभी तुमको फिर से लेना है। जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, अभी तो सब जीवन बंध में है, खास भारत और आम दुनिया इस समय बाबा कहते रावण की जेल में है। और कहाँ है? एक तो रावण की जेल है, दूसरा शोक वाटिका में है। एक अकेली सीता नहीं थी शोक वाटिका में, लेकिन हम सब सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, और राम गया भारत से लंका और वहां से सीता को ले आया, तो बाबा कहते ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। हाँ, रावण ने, जो लंका का मालिक था, उसने भारत में आकर के सीता चुराई, ऐसी बात नहीं है। ये तो सब है दंत कथाएं, गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना, जो स्वयं भगवान ने सुनाई है। कहाँ सुनाई है श्रीमद् भगवत गीता? भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कब पाया था, जीवन मुक्ति का वर्षा कब पाया था? कलयुग के अंत में पाया था। अभी हम सब पा रहे हैं ना वही जीवन मुक्ति का वर्षा, जो कलयुग के अंत में पाया था। पर भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमने फिर से वो स्वर्ग का वर्षा पाया था, पाया है, जो था वो फिर से पा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये भारतवासी नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। भक्ति का ज्ञान तो है, लेकिन सदगति मार्ग का ज्ञान बाबा कहते हैं किस भारत में बिल्कुल किसी को नहीं है। सब भक्ति ही सिखलाने वाले हैं, कहेंगे क्या कहेंगे जो भक्ति सिखलाते हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। अब ये भक्ति तो द्वापर से चली आती है, सतयुग और त्रेता में तो ज्ञान की प्रारब्ध है। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है, नहीं, वो ज्ञान तो केवल अभी ही मिलता है। तो ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था वो बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है, फिर से मिल रहा है। भारतवासी जब नर्कवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। हाँ, ऐसे पुकारते हैं परमात्मा को। अब दुख हरता सुख करता तो कहते हैं, लेकिन किसका किसका दुख हरता सुख करता है? सर्व का, ऐसे नहीं केवल भारत का, सबका, सबका दुख हरता सुख करता, क्योंकि इस समय सारी दुनिया दुखी है ना, तो सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम, सब में पांच विकार है। बाप है पतित पावन, तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अब सर्व का सदगति दाता में कौन कौन आ गए? हाँ, केवल धनवान का नहीं, लेकिन सबका। अहिल्याएं, कुबजाएं, गणकाएं और जो गुरु लोग भी हैं, उन सब का उद्धार करने मुझे आना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पर भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे, लेकिन हम ही ये थे, भारतवासी थे, हम ही ऐसे पूज्य थे। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानता, हम ही ये स्वर्ग के मालिक थे, ये भारतवासी नहीं जानते। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड, तो भारत पावन सच खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड। हम कितने भारतवासी भाग्यशाली है, हम यहाँ बैठे हैं, ये अविनाशी खंड है। इस खंड का विनाश नहीं हो सकता है। दुनिया में तो बहुत डर है, अचानक हमारे ऊपर बॉम्ब न गिरे, पर बाबा भारत के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर बॉम्ब नहीं गिरेगा, यहाँ तो खून की नदियां बहेगी, है ना, लेकिन अविनाशी खंड है। तो बाबा कहते हैं ये भारत पावन खंड था, ये भारत अविनाशी खंड है जो कभी भी विनाश नहीं होता है। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे ही नहीं। बाबा कई बार डबल विदेशियों को हंसी हंसी में कहते हैं, आप तो भारत के मालिक थे ना, उस देश के थोड़े मालिक थे। तो परंतु फिर वहां जाएंगे जरूर, पुष्पक विमान में जाकर वहां पिकनिक करेंगे, वो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो और कोई खंड थे नहीं, वो सब बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प कोई लाखों वर्ष का कह दिया है, तो बाप कहते हैं कल्प की आयु तो 5000 वर्ष है, वो फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। हाँ, लाखों वर्ष है सृष्टि की आयु और फिर लाखों वर्ष लाखों जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्यों को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है। क्या क्या समझते हैं ना कि मनुष्य आत्मा इन सब योनियों में जाती है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म तो अलग है, 84 लाख वैरायटी है। ये जरूर कह सकते हैं कि 84 लाख वैरायटी है, अनेक प्रकार की स्पीशीज है, सब योनियां हैं, बहुत सारी है, 84 लाख भी किसने गिनती की, अनगिनत है योनियां भी, जैसे कितने कीट पक्षी जीव जंतु वो भी तो सब योनि के ही रूप में है। तो बाबा कहते हैं 84 लाख वैरायटी है, मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है। ऐसे नहीं कि अभी कोई मनुष्य होगा वो कोई 3 हाथ वाला या 4 हाथ वाला, कोई पैदा होते भी है लेकिन फिर वो जल्दी टिकते नहीं है, वो जल्दी मर जाते हैं। कोई अगर गर्भ में भी कुछ ऐसी अब नॉर्मल पैदाइश कुछ हुई तो वो कोई बचते नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की वैरायटी भी तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं उनके ही 84 जन्म हैं। तो बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं, कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर के पावन बनाते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुख धाम होगा। तो बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सतो से रजो रजो से तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी एवर हेल्दी एवर वेल्दी, हाँ कोई नहीं होता। नशा चढ़ाओ भारतवासी, हमारे जैसा एवर हेल्दी एवर हैप्पी एवर वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। अभी जैसे पत्थर चारों तरफ है, वहां हीरे जवाहरात ऐसे होते थे, पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वो भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ मंदिर तो एक बाबा कहते था, लेकिन ऐसे और भी कई मंदिर होंगे जो इतने भारी मंदिर, इतना उसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे। तो बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, अब सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए, कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा, सब होंगे ना, उनको भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है भले भगवान भगवती कहेंगे लक्ष्मी नारायण को, लेकिन बाप ने समझाया है कि भगवान तो एक ही है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। हे प्रभु हे ईश्वर कह दिया, पर उससे ये सिद्ध नहीं होता वो सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है, केवल एक ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है। वैसे तो गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का भी ये अंतिम जन्म है। हाँ, तो बाबा कहते हैं एक अर्जुन की बात नहीं है, एक की बात नहीं है, और न ही कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का ही राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं, लाखों साल पहले। हाँ, लॉन्ग लॉन्ग अगो कहेंगे, फिर कहेंगे लाखों साल पहले, तो इतना दूर कर दिया है तो यह कहानी भूल गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते हैं, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं। कहावत है, भगवान के लिए कहावत है कि वो सर्व का सदगति दाता है, पतितों का पावन करता एक ही है, एक ही सच्चा बाबा है जो सच खंड की स्थापना करने वाला है। सच्चा बाबा सच खंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता। किसी की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं तो शिव बाबा की भी नहीं जानते हैं, तो बाप है नई दुनिया का रचयिता। उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, बेहद सुख देने वाला। हेवनली गॉड फादर, हेवन का, स्वर्ग का सुख देने वाला, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नर्कवासी को आकर के स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये केवल एक बाप का ही काम है, केवल एक का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, अब तुमको पतित फिर कौन बनाते हैं? भगवान तो कितना ऊंचा बनाते हैं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण, रावण, रावण दुश्मन, सबसे नंबर वन दुश्मन। मनुष्य कह देते हैं, दुख भी ईश्वरी देते हैं, सुख भी ईश्वरी देते हैं। बाबा कहते हैं, ये भी मेरी ग्लानी है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करता। पर बाबा कहते हैं, मैं दुख तो देता ही नहीं हूँ, मैं कांटे नहीं देता हूँ, ये कांटे रावण देता है, मैं तो तुमको सुख देता हूँ। तो बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, कितना सुख देता हूँ, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण ही नहीं करेंगे, सिमरण ही नहीं करेंगे, इतना सुख देते हैं बाप। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। तो ये है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं, पूछते हैं बच्चे बाबा से, बाबा कितने जन्म हमने लिए हैं, कितने जन्म हमने लिए, बाबा से पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बच्चे बाप से पूछते हैं, कहानी के रूप में बाबा इसका उत्तर देते हैं, बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, हाँ सब तो नहीं सतयुग के आदि में इकट्ठे आएंगे, तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नारायण, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। हम सब क्या सुन रहे हैं? सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुन रहे हैं, सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रहे हैं। ये है ज्ञान, वो है भक्ति, शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। ये है बाबा जो हमें सिखाते हैं, ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, ये स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना पड़े, क्योंकि आत्मा ही ये ज्ञान लेती है, शरीर तो नहीं लेता है ना, तो देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। तो बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं उस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। जैसा संस्कार होगा वैसा ही फिर जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं ये जो पवित्र थे लक्ष्मी नारायण अंतिम जन्म में पतित हैं, तत्त्वम तुम भी ऐसे ही है, पहले इतने पावन थे फिर अंतिम जन्म में सब पतित हैं, तत्त्वम मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। अब आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है, तन पतित है दुनिया पतित है, लेकिन मुझे उसी के तन में आना है जो फिर पहले नंबर में जिसको जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, ये है ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण। ब्रह्मा सरस्वती भी कौन है? ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, बाबा हमारी बुद्धि को पारस बना रहे ना, पत्थर बुद्धि थे तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना ये सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना। कितने हैं आर्ग्यू करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना, तो बहस करते रहते हैं, तो पत्थर बुद्धि है, भगवान क्या सुना रहा है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना मासी का घर नहीं है, तो हे आत्माएं अभी देही अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे पारस बुद्धि? पहले देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो, देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है, सबको मरना है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। तो बाप कहते हे भारतवासी बच्चों तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। डबल विदेशी ये ना समझे हम तो विदेश के हैं। बाबा तो कहते आप भी तो असली भारतवासी ही हो ना, तभी तो बाबा के बने। तो हे भारतवासी बच्चों तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो, गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले पहले कौन अलग अलग हो जाते हैं? तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले बाप से अलग होकर के आए हो, और धर्म वालों के जन्म तो थोड़े होते हैं, सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, जो धारण नहीं करा सकते, चलो खुद तो समझ लेते लेकिन दूसरों को नहीं धारण करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम तो समझो, ऐसे तो नहीं कि तुम नहीं समझ सकते हो, तो तुम तो समझो, उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्मा ही तो धारण करती है ना, शरीर थोड़ी धारण करता, आत्मा ही ये ज्ञान धारण करती है। आत्मा के लिए कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है, तुम सब अब वानप्रस्थ में हो, सब छोटा बड़ा। कल बाबा ने कहा कैसा वंडरफुल क्लास है, छोटे बड़े सब एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना, तो बच्चों का भी अधिकार है ये ज्ञान लेने का। तो बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था, तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो, वानप्रस्थ अवस्था वाले फिर गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए, गुरु करते हैं उनको मंत्र देता है गुरु, तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार ही नहीं है, तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ, मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा, तो अभी स्मृति आई है, क्या स्मृति आई है कि हम सब आत्माओं का वो बाप है, वो आत्मा सत्य है चैतन्य है, हाँ, क्योंकि अमर है, अमर है, हाँ, अजर है, अजर माना कभी बूढ़ा नहीं, बूढ़ी नहीं होती आत्मा, आत्मा सदा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी, आत्मा सत है चैतन्य है क्योंकि अमर है, सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है, बाप भी सत और चैतन्य है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं, जो सारी झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता है, इसलिए कहते हैं मुझे, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं, सारे ज्ञान का सागर है, तुमको भी अभी सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है ना, तो बाप कहते मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पा लेता है, अभी तो वही हाल है ना, सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पा चुका है, अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है, प्राय लोप है ना, केवल यादगार निमित्त मात्र चित्र है या मूर्तियां हैं, तो बाबा कहते हैं प्राय गुम है, जब देवता धर्म गुम हो जाता है, बाबा कहते तब बाप को आना पड़ता है, देवता धर्म बिल्कुल गुम हो जाता है, पहले तो फिर भी आज से 50-60 साल पहले भी कईयों के जो नाम होते थे ना उसमें देवी नाम जरूर होता था, शांता देवी दुर्गा देवी देवी देवी, आजकल ये देवी वेवी देव नाम सब हट गए, हाँ कोई देवी देव नहीं कहलाते हैं, पता नहीं क्या चिंटू मिंटू पिंटू आप यही नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं नहीं है, प्राय गुम है, जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना होता है, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं, अनादि है अविनाशी है, एंड होती नहीं, अंत होता ही नहीं है, बाप आते हैं अंत में, चक्र का जब अंत होता है, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे, तुम्हारा एक बाप है, हाँ सब हम आत्माओं का एक ही बाप है, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली है, उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। और फिर उसके बाद जो आता था, सुख में जो सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो वो बाबा कहते अभी संगम युग का है, हम संगम युग पर सुख में हैं, भगवान की गोद में हैं, लेकिन हम याद जरूर करते हैं शिव बाबा को। तो सुख में हम सिमरण करते हैं तो आधा कल्प के लिए दुख सब दूर हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में तो दुख है ना, यहां सिमरण करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो क्या हो, तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे, कौन बनाएगा स्वर्ग भारत में, भारत में को भगवान ही तो स्वर्ग बनाएगा ना। तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए अगर बाप ना आए। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है, हाँ ये अथॉरिटी के बोल है, सब इस समय तमो प्रधान है, सब धर्म वाले। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है, अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाएंगे, अभी कोई शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, नहीं, उसका पुनर्जन्म नरक में ही होना है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अधिकतर सब धर्मों में कहते हैं, अंग्रेज भी कहते हैं ना, क्रिश्चियन धर्म लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, वो भी कहेंगे भविष्य में गया। तो बाबा कहते हैं जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो सिद्ध होता है कि वो नरक में था ना, अभी अभी नरक में था तब स्वर्गवासी हुआ, अभी स्वर्ग में है तो फिर क्यों कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब, अच्छा तुम कहते हो स्वर्गवासी हुआ, अच्छी बात है तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तो उनको क्यों खिलाते हो, बंगाल में मछली आदि भी खिलाते हैं, वो अंतिम समय उनका आता है ना, तो मछली आदि भी खिलाते हैं। अरे और फिर वो जब उनका पिंड भरते हैं या धामा करते तो भी उसमें मछली जरूर होती है, मछली को बड़ा शुद्ध शुभ मानते हैं। जो भी स्त्री होगी अगर वो पति उसका जिंदा है, कहते आपको मछली जरूर खानी चाहिए बंगाल में, नहीं तो पति के लिए अशुभ होगा, इसलिए मछली जरूर खाओ। तो देखो बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे अच्छा ये मछलियां खिलाना है, जाते ना कई बार जाते हैं नदियां, नदी में मछलियां होती है तो मछली को दाना देते हैं, गेहूं आटे का दाना मछलियों को खिलाते हैं, तो बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे इनको इन सब खाने की क्या दरकार है, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। तो दोनों बातें हैं, मछली खिलाते हैं तो उनको इन सब खाने की दरकारी क्या है, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। तो बाप कहते हैं ये सब है गपोड़े, पार निर्वाण कोई नहीं जाता है, या मछली खाने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। बाप कहते ये सब है गपोड़े, वापस तो कोई भी जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है, जो ज्ञान बाबा देते इसमें कोई तकलीफ नहीं है, भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, बहुत तकलीफें सहन की होगी ना माताओं ने भाइयों ने भक्ति मार्ग में। वही बाबा कहते अभी ज्ञान मार्ग में तो कोई तकलीफ नहीं है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते थे, है ना, राम राम जपते जाते राम 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 इतनी रट लगाए कि तो रोमांच खड़े हो जाते थे। वो सब है भक्ति मार्ग, ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि ये रोशनी करने वाले हैं, सृष्टि एक मांडवा है, एक रंगमंच है, उसकी ये बतियां हैं, जो भी सूर्य चांद सितारे ये रोशनी करने वाले हैं, ये कोई देवताएं थोड़ी है, वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वो फिर कह देते हैं सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझकर पानी देते हैं, देते हैं ना, जल देते हैं सूर्य को, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा तो पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो किस किस की भक्ति करते हैं, टिवाटे की भक्ति। टिवाटा माना जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, है ना, यहाँ से जाते हैं तो तीन रास्ते मिलते हैं, एक नकीले की तरफ जाता है और एक मिनिस्टर्स कॉटेज की तरफ जाता है और एक यहाँ पांडव भवन की तरफ आता है। तो वो जो बीच का जो रास्ता है वहाँ पर दिया जलाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, फूल रखते हैं, तो वो टिवाटे की भी पूजा करते हैं, रोड की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो देखो टिवाटे पर भी हम मिट्टी का दीवा जगाते हैं, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती, तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज हम आपको मुरली के बाद कल का प्रोग्राम भी सुनाएंगे, इसीलिए सब सुन के ही जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, उपराम और एवर रेडी बन, उपराम भी रहना है और एवर रेडी भी बनना है। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। सर्व कलाओं में संपन्न बनना है तो क्या करो, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज होते हैं ना, क्या कैसी कैसी कलाएं दिखाते हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं, अपने शरीर को मोड़ते हैं। यहाँ भी दो बच्चे आए थे, बंगाल से आए थे, कैसे अपने शरीर को मोड़ा, हाथ पैर कैसे मोड़ते थे, बात ही मत पूछो। हाँ, अभी बुजुर्ग हो गए तो मुश्किल है ना, लेकिन बच्चे तो कर लेते हैं, तो शरीर को मोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हरेक कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, यही कला है। तो अभी हमारी कला कौन सी है, हम तो ऐसे नहीं कर सकेंगे ना, लेकिन हमारी कला कौन सी है, आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। बुद्धि को तो स्थिर कर सकते ना, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। हम तो यही बताते हैं, चलो पद्मासन नहीं कर सकते हो, सब नहीं कर सकते पद्मासन, जिसको घुटने का प्रॉब्लम है पद्मासन थोड़ी कर सकता है, नीचे बैठना भी मुश्किल है, तो पद्मासन नहीं कर सकते, पर पद्म जैसा जीवन तो बना सकते हो, वो तो हम सब बना सकते हैं। शीर्षासन नहीं कर सकते हो, सिर नीचे पैर ऊपर, शायद तकलीफ हो कहीं स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जाए, लेकिन हाँ मन का बैलेंस तो रख सकते हैं ना, भले सिर का बैलेंस नहीं रख सको। तो बाबा कहते हैं जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है, इस एक कला से ही 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ, ये तो बन सकते हैं ना एक सेकंड में अशरीरी। युद्ध में समय नहीं गवाओ, कौन सा युद्ध चलता अंदर ही अंदर, व्यर्थ संकल्पों का युद्ध चलता है, वो समय नहीं गवाओ, एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सच्चे स्नेही और सहयोगी कौन? सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल क्या मिलता है? ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है, ये ज्ञान का फल है। संगम युग पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प बोल कर्म संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम आपको कल का प्रोग्राम बता देते हैं स्मृति दिवस के निमित्त। कल सवेरे पहले तो योग होगा, 6:30 से 7 तक योग होता है, सभी को यहाँ आना है। फिर 7 बजे जैसे मुरली चलती है, मुरली चलेगी 7 से 8 बजे तक। फिर 8 बजे बाबा को भोग लगेगा और संदेश सुनाया जाएगा, इसीलिए सभी भोग में बैठेंगे और संदेश सुनेंगे। और संदेश के बाद जो मुख्य भाई बहने हैं वो पहले शांति स्तंभ पर जाएंगे, क्योंकि उनको आगे खड़ा करना है, तो शांति स्तंभ पर जाएंगे। फिर उसके बाद और जाएंगे पांडव भवन में। भाइयों का जो जाने का रास्ता है वो छोटा गेट जो पांडव भवन का है वहां से एंटर करेंगे, और जो बहने हैं वो मेन गेट से एंटर करेगी, डिस्पेंसरी के थ्रू जाएगी, आगे से नहीं जा सकेंगे, वहां पर रोका जाएगा। अगर आपको रोका जाता है तो आप कृपया रुक जाइए और डिस्पेंसरी के तरफ से शांति स्तंभ पर जाएंगे। और उसके बाद शांति स्तंभ पर हम बाबा की स्मृति में खड़े रहेंगे, और फिर उसके बाद पांडव भवन के कमरे में जाएंगे पहले हमारे मुख्य भाई बहने, फिर बाबा की झोपड़ी में जाएंगे। तब तक आप सभी धीरे धीरे लाइन लगाएंगे और बाबा के कमरे में 3-3 मिनट बैठेंगे, गीत बजता है, और फिर नाश्ते पर जाएंगे। नाश्ता सभी के लिए 4 खजूर, नारियल, 1/2 सेब, 1 केला और 4 बेर और गाजर वाला दूध मिलेगा। ये सब यही भोज, यही नाश्ता होगा। फिर 10 से 12 बजे के बीच में ज्ञान सरोवर के भाई बहन ही आएंगे, सवेरे सवेरे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ ही इतने भाई बहन हो जाते हैं। तो ज्ञान सरोवर वालों को कहा है कि आप वहीं मुरली सुनो और 10 बजे यहाँ आयो। तो 10 से 12 बजे तक सभी ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहने पांडव भवन में चार धाम की यात्रा करने आएंगे। वहाँ डबल विदेशी भी है, 200 डबल विदेशी है वहाँ, वो भी आएंगे। फिर दिन में 12 बजे तीनों स्थानों पर भोग लगेगा, फिर से भोग लगेगा। यहाँ भी मेडिटेशन हॉल में योग में भोग लगेगा। और उसके बाद 12:30 बजे ब्रह्मा भोजन होता है ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में सबके लिए। तो पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सब जगह ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम है। और फिर शाम का, जैसे आपको मालूम है जो प्रोग्राम होगा, पहले सूरज भाई का क्लास होता है 5 से 6, उसके बाद योग होता है, 6:15 बजे भोग होता है, और उसके बाद 6:30 बजे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य ट्रांसमिशन के द्वारा सुनाए जाते हैं। यहाँ पर ही भी होगा, मेडिटेशन हॉल में होगा, यहाँ तो नहीं होगा, वो कनेक्शन नहीं है, लेकिन मेडिटेशन हॉल में और बाहर आंगन में बड़ा स्क्रीन लगाएंगे और वहाँ पर आप देख सकेंगे नीचे का प्रोग्राम। तो ये खास प्रोग्राम है। अभी बहुत कुछ और भी सूचनाएं हैं बाबा के कमरे के लिए। आप सब बाबा के कमरे में तो जाएंगे, लेकिन और भी आपको ध्यान देने की बातें हैं। सभी भाई बहनें, चाहे मधुबन वाले, सेवाधारी, पार्टी में आए हुए, हॉस्पिटल वाले, आबू निवासी, कृपया ध्यान दें कि बाबा के कमरे में, झोपड़ी में, हर एक को केवल 3 से 4 मिनट ही बैठना है। आए हुए सभी भाई बहनों को चांस दें, अगर कोई भी 3 से 4 मिनट से ज्यादा बैठते हैं तो वहाँ सेवारत भाई उनको उठाएंगे। इसीलिए ऐसे नहीं सोचो हमको तो बाबा के कमरे में पूरा टाइम बैठना है, बस 3 मिनट से ज्यादा नहीं तो आपको कोई उठाएंगे। तो कृपया सभी ध्यान दें और आपका सहयोग प्रदान करें, ये बहुत जरूरी है। और बाबा का कमरा और झोपड़ी के पास जो भी छोटी बड़ी गाड़ियां रेगुलर खड़ी रहती है बाबा के कमरे और झोपड़ी के पास, वो कृपया आज ही वहां से हटा दें। 18 जनवरी की व्यवस्था बनानी है, सभी अवश्य इसमें सहयोग देंगे। ओम शांति भवन के सामने जो गाड़ियां खड़ी है वो भी हटानी होगी, सब यहाँ से हटानी होगी। जब तक आप यहाँ पांडव भवन तपस्या करने आए हैं, कृपया अपना मोबाइल साइलेंस में रखें और मोबाइल के ट्रैफिक कंट्रोल भी बंद रखें। हर एक का अपना अपना समय का ट्रैफिक कंट्रोल बजता रहता है, आप तो भूल जाते हैं कि ये मेन ट्रैफिक कंट्रोल बजा या आपके मोबाइल में बजा, इसलिए वो भी सब बंद कर दो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ समय पर अपने आप ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, आपके मोबाइल के ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखना, मोबाइल बंद ही रखो तो बहुत अच्छा। कई तो खास शांति स्तंभ पर बैठ करके मोबाइल पर बातें करते हैं, सारा दिखाते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल साइलेंस में रखना है सब कुछ। तो बाबा, तो इसलिए अपना मोबाइल साइलेंस में रखें और मोबाइल के ट्रैफिक कंट्रोल भी बंद रखें। मधुबन में टाइम से ट्रैफिक कंट्रोल अपने आप बजेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये जरूर ध्यान दें। और दूसरी बात, बाबा के कमरे में कोई भी पानी की बोतल या कुछ भी ऐसी चीज मत रखें, कुछ भी रखें नहीं तो उठा लिया जाएगा। कुछ भी वहाँ रखने की जरूरत नहीं है, बस 3 मिनट बाबा के कमरे में बैठ करके आप उठेंगे, क्योंकि बहुत लाइन लगती है, तो कल तो बहुत आएंगे। और जैसे आप ना बाबा के कमरे में गए, झोपड़ी में गए, फिर नाश्ते पर जा सकते हैं, कोई तो पहले भी जा सकते क्योंकि लाइन तो लंबी होगी कल। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, डबल विदेशियों को बहुत सूचनाएं देनी है इसलिए वो बैठे रहेंगे। ओम शांति।